दिखाया जा रहा है और कैसे हम ईईजी की वेव्स को देखते हैं वो भी बताएंगे। तो आप सब जल्दी से जल्दी हॉल के अंदर पहुंचे ताकि आप लाइव डेमो देख सकें, और उसके साथ ही हम रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च की मेथडोलॉजी को कैसे प्लान करते हैं वो भी रामजीम भाई हमें बताएंगे। तो सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, आप लोग सभी आए, क्योंकि बहुत से भाई बहन ये पूछते हैं कि हम कैसे करें कैसे करें, तो वो आज आप सबके सामने प्रैक्टिकल इसीलिए दिखाया जा रहा है। तो जो जहां भी है वो यहां पहुंचे।
ओम शांति। सेशन की शुरुआत में विधि पूर्वक हम दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। शांति। हमारे बीच डॉक्टर विनय पंड्या भाई साहब बैठे हैं, एक वरिष्ठ कोर ग्रुप मेंबर है आप स्पार्क के, जिनके मस्तिष्क के ऊपर कहो या माथे के ऊपर कहो ई मशीन का कनेक्शन किया जा रहा है। आज वो थोड़ी देर के लिए योग अभ्यास में बैठेंगे और उसी समय इनका मैप रीडिंग किया जाएगा, माइंड रीडिंग किया जाएगा उनका। मशीन के द्वारा, उसको ईईजी मशीन कहते हैं, आप सब जानते होंगे इसके बारे में। और ये इस मशीन के बारे में क्या स्टडी किया जा रहा है, ये सारी जानकारी आज हमें देने के लिए हमारे बीच विराजमान हैं ब्राता रामाजयम भाई। आपका थोड़ा संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा, आप सब इनके परिचय से परिचित हो सकते हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन के शुरुआत में एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करने के बाद आपने पीएचडी किया है। आप एक न्यूरो साइंटिस्ट और प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट है। आपके करियर की शुरुआत आपने चंडीगढ़ में स्थित पीजीआई इंस्टीट्यूट में, आप एज अ रिसर्च ऑफिसर आपने अपना करियर शुरू किया है। उसके पश्चात आप बैंगलोर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस, यहां पर आप साइंटिस्ट सी के ग्रेड पर आप कार्यरत थे। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस, यहां पर आप साइंटिस्ट सी के ग्रेड पर आप कार्यरत थे। उसके बाद वर्तमान में आपकी पोस्टिंग, भारत सरकार ने आपकी पोस्टिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश स्थित आईआईटी मंडी में आपका पोस्टिंग हुआ है। वहां पर आप एज अ फैकल्टी न्यूरोसाइंटिस्ट के रूप में कार्यरत है, फैकल्टी न्यूरोसाइंटिस्ट के रूप में कार्यरत है आप। आप बीते 20 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, बाबा के ज्ञान में आप सक्रिय रूप से चल रहे हैं। तो हम सभी करतल ध्वनि से रामाजयम भाई का स्वागत करेंगे। तीन बहनें जो एक्टिवली ईईजी इंस्ट्रूमेंट की फिटिंग कर रहे हैं, उसमें से आप देख रहे हैं इस समय इंजेक्शन दे रहे हैं, एकता बहन इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, कुछ जेल लगा अप्लाई कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड से जेल लगा रहे हैं वो है शक्तिजा बहन। एकता बहन दिल्ली से पधारे हुए हैं खास ये इंजेक्शन देने के लिए आप सबके बीच में। और शक्तिजा बहन आप आईआईटी मंडी में ही थीसिस पीएचडी कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, इसका आपका टॉपिक है न्यूरल ऑसिलेशन इन अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, इसके विषय में पीछे से बता देंगे हम हमें शक्तिजा बहन। और एक लंबी बहन दिख रही है इन तीनों बहनों में, आप है साक्षी बहन, ठीक है ना। तो आप भी सोनीपत स्थित ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं और आपका थीसिस है राजयोगा फॉर डिजिटल डी एडिक्शन। आजकल बहुत बड़ी बीमारी है ये एडिक्शन ऑफ मोबाइल, इसमें डिजिटल डी एडिक्शन के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। इसके बारे में भी हमें मौका मिला तो हम सबको इस टॉपिक के ऊपर भी हमें अवगत कराएंगे ये दोनों बहनें। ओम शांति, शुक्रिया रामाजयम भाई, इट्स योर माइक।
ओम शांति, ओम शांति। इस तरफ से आवाज नहीं आ रहा है, ओम शांति। थैंक यू। कल को जो सेशन हुआ था रात का, उसको कंपेयर करने से अभी ज्यादा लोग दिख रहे हैं तो हमें भी ज्यादा उमंग हो रहा है अंदर से। थैंक्स फॉर दैट। तो अभी का जो सेशन है इसमें थोड़ा थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक अच्छा सा नया मोबाइल दे देंगे, बहुत कॉस्टली मोबाइल है, बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन वो किस काम का है, कैसे यूज करना है, इसका कोई कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर उसका यूज सही रीति से नहीं होता है। तो एक साइड में डिवाइस है जिसको हम यूज कर रहे हैं ब्रेन वेव्स देखने के लिए, लेकिन साथ साथ वो डिवाइस रख के हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर कुछ करना है तो उसके लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या जानकारी आपको होनी चाहिए इन जनरल रिसर्च के बारे में, तो वो भी साथ साथ हम आपको बताएंगे। तो अभी रिसर्च के बारे में हम जो भी बताने वाले हैं ये कोई एकेडमिक रिसर्चर्स के लिए नहीं है। कौन कौन है यहाँ पर रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पीएचडी वो कुछ नहीं चाहिए बट मुझे रिसर्च करना है, कौन कौन है ऐसे? बहुत सारे हैं। जैसे बाबा कहते हैं हम सभी कौन है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है ना, तो सभी ऑलरेडी रिसर्च तो कर रहे होंगे, लेकिन सिस्टमैटिकली एकेडमिक लैंग्वेज में आपको नहीं पता होगा रिसर्च आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो बाबा के सामने, बाबा की नजर में सभी यहाँ पर जो भी बैठे हैं, बाबा के जो ज्ञान है उसकी गहराई में जो भी जाते हैं, सभी साइंटिस्ट ही है। तो इसलिए पहले अपने आप को एक बार शाबाश तो दे सकते हैं, हम सभी कौन है। इस पार्क में भी आए तो डबल साइंटिस्ट ऑलरेडी बन गए हैं, ठीक है। तो आपको पीएचडी मिले या ना मिले वो अलग बात है। तो इसलिए टॉपिक भी ऐसे ही रखा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर नॉन एकेडमिक रिसर्चर्स। पहले ही हमने निर्णय कर लिया कि आप सभी रिसर्चर्स ही है लेकिन एकेडमिक्स में नहीं है, तो इसलिए टॉपिक भी वैसे रखा है, ठीक है। ये जो टर्म्स है ये सारी चीजें आपको लगेगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो सिर्फ मैं टर्म्स का अभी नाम लूंगा, बस वो क्या है वही चीज हम बहुत सिंपल शब्दों में देखेंगे। तो एक है ऑन्टोलॉजी। अगर ये शब्द आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप ये सब चीजें साइड में रखिए, बस सुनते सुनते आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑन्टोलॉजी माना व्हाट इज इट, से फॉर एग्जांपल ये माइक है, व्हाट इज दिस बेसिकली, तो उसके बारे में जो भी कुछ विषय आपको पता होना चाहिए वही चीज ऑन्टोलॉजी कहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, सो दैट व्हाट इज पार्ट, उसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी। उसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी माना ठीक है ये माइक है तो इसके बारे में जो भी कुछ जानना है वो कहाँ से मुझे प्राप्त हो सकता है, सो हाउ डू आई नो अबाउट दिस थिंग कॉल्ड एज माइक, सो दैट इज द सेकेंड पार्ट एपिस्टेमोलॉजी। फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी, ये क्या है मुझे पता चला, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैंने इकट्ठा किया अलग अलग सोर्सेस से, अभी इसको यूज करना है, इसका फायदा लेना है, बेनिफिट्स लेना है, तो मुझे क्या करना है, उसका क्या स्ट्रैटेजी है, तो वही है मेथोडोलॉजी। ये सब चीजें हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ चाहिए, वी एक्सपेक्ट समथिंग। पुरुषार्थ आप करते हैं तो यू हैव सम गोल्स, आपके पास कुछ लक्ष्य होता है तो उसके हिसाब से आप पुरुषार्थ करते हैं ना, तो वैसे ही ये मेथोडोलॉजी भी किसके लिए है, आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट, नो इट एक्सपीरियंशियली, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। तो आप जो भी करेंगे सिस्टमैटिकली उसके हिसाब से आपको आउटकम्स भी मिलेंगे, एंड इट इज नॉट लाइक लीनियर, फर्स्ट वन नेक्स्ट वन इज टू थ्री फोर, इट्स अ काइंड ऑफ आइटरेटिव प्रोसेस, बैक एंड फोर्थ, इट कीप्स मूविंग, ठीक है। आई विल कम बैक टू दिस अगेन, वील जस्ट लीव इट देयर। तो अभी हम समझेंगे ये जो ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, ये सारी चीजें क्या है। सबको अभी स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपके फेस से मुझे पता चल रहा है। तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी लिखा है, व्हाट इज इट, क्या है ये। यहां से आइसक्रीम आंसर आ रहा है, इधर से आइसक्रीम ही है लेकिन बहुत कम आवाज आ रहा है। व्हाट इज इट, क्या है ये, सबका यही उत्तर है। अगर किसी का और कुछ उत्तर है तो हाथ उठाइए, आइसक्रीम नहीं है बोलने वाले, हाथ उठाइए, ठीक है आइसक्रीम ही है। आई एम गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन नाउ। अभी आप मान लीजिए कोई कुछ व्यक्ति, कुछ लोग बाहर हैं, उनके वोकैबुलरी में आइसक्रीम शब्द ही नहीं है, आइसक्रीम शब्द ही उनको पता नहीं है, तो अभी उनको बोलना है ये क्या है, आप क्या बोलेंगे, आइसक्रीम शब्द ही उनके लिए है ही नहीं, हाँ जी स्वीट, ओके बहुत सारे स्वीट है क्या, स्वीट का गोला, लड्डू भी है। आपको मैसेज कन्वे करना है ये आइसक्रीम ही है, लेकिन ये आइसक्रीम शब्द ही उनके वोकैबुलरी में नहीं है। स्वीट का गोला माना बहुत सारे गोला, गुलाब जामुन भी है, हाँ जी ठीक है तो ओके आई गॉट ऑल ऑफ यू इन द डायरेक्शन वेयर आई वांट यू टू थिंक बेसिकली. तो अभी आप क्या कह रहे हैं एक्चुअली यू आर डिस्क्राइबिंग व्हाट इट इज. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज इट. जब मैंने कहा ये आइसक्रीम शब्द ही वोकैबुलरी में नहीं है देन यू स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग इट. लेकिन फिर से क्वेश्चन वही है डिस्क्रिप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज बेसिकली. से फॉर एग्जांपल ये लंबा है काला है ऐसे ही बात करता है. बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ मैं अकेला नहीं होता हूँ है ना. तो हाउ डू यू स्पेसिफिकली से दैट दिस इज मी ओनली. कुछ तो होना चाहिए ना. ओके सो वील कम टू दैट अगेन. सो वॉट यू हैव डन जस्ट नाउ इज एक्चुअली रिटन हियर. जब मैंने कहा ये आइसक्रीम शब्द ही नहीं है आप डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दिया. ये जो डिस्क्रिप्शन है दीज आर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट बट इट इज नॉट दैट एक्चुअल थिंग इट्सेल्फ. जो भी आप डिस्क्रिप्शन देने लगे वो एक्चुअली वो वस्तु नहीं है. वस्तु का एक्सप्लेनेशन है डिस्क्रिप्शन है ना. मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं. ऐसे देख रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं. तो एक होता है वस्तु दूसरा होता है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन. वो जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कई तरह से आप देख सकते हैं. अगर कोई केमिस्ट्री वाला है तो वो बोलेगा वो सारी चीजें सॉल्ट है शुगर है और कुछ नहीं है. फिजिक्स वाला अगर होता है तो वो बोलेगा ये सारी चीजें बहुत कूल आइटम है आप रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगा. और कोई मेडिसिन से आएगा तो वो बोलेगा ये मत खाओ आपका थ्रोट खराब हो जाएगा. सभी एक ही चीज के ऊपर बातें कर रहे हैं बट एवरीबडी इज टॉकिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेम स्टफ. तो ये है सेकंड पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे एपिस्टेमोलॉजी. हाउ कैन आई नो अबाउट व्हाट कैन आई नो अबाउट दैट. उसके लिए आपको अलग अलग रिसोर्सेस मिल सकते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि कॉन्शियसनेस माना आत्मा है वो एक अशरीरी है एक लाइट है. अगर मेरा डेफिनेशन आत्मा का ये है कॉन्शियसनेस का ये है देन आई नीड टू लुक इन टू सम बुक्स रिलेटेड टू लेट्स से गीता या बाबा का जो ज्ञान है या ऐसे रिलेटेड स्पिरिचुअल बुक्स दैट इज गोइंग टू बी माई रिसोर्सेस टू गैदर इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए मेरा रिसोर्सेस स्पिरिचुअल बुक्स हो सकता है या रिलेटेड रिसोर्सेस हो सकता है. अगर मैं कहूंगा कि कॉन्शियसनेस माना ये कुछ नहीं ये सारी चीजें इसके अंदर है ब्रेन है आत्मा ये सारी चीजें फालतू है. इफ आई एम स्टार्टिंग विद दिस आइडिया कॉन्शियसनेस माना ब्रेन है देन आई नीड टू लुक इन टू सम अदर रिसोर्सेस. न्यूरोसाइंस रिलेटेड बुक्स हो सकता है या और कुछ रिसर्च साइंटिफिक आर्टिकल्स हो सकता है जो मेरा रिसोर्सेस बनेगा. सो हाउ डू आई डिफाइन विच इज वॉट आई वॉज टेलिंग एज ऑन्टोलॉजी वॉट इट इज. उसके हिसाब से मुझे कहां देखना है दैट इज गोइंग टू डिफर. आप कहां देख रहे हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए उसके हिसाब से आप क्या करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. अगर मेरा मान्यता यही है कि आत्मा उसको ही कॉन्शियसनेस कहा जाता है दैट इज ए नॉन फिजिकल थिंग तो उसको अनुभव करना है तो मेरा प्रैक्टिसेस भी उसके रिलेटेड ही होना चाहिए. इफ आई से कॉन्शियसनेस इज ब्रेन देन उसका अनुभव लेने के लिए मेरा प्रैक्टिसेस भी उसके हिसाब से होगा. सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज मेथडोलॉजी. तो मैंने डिफाइन किया ये क्या है फिर उसके बाद उसके बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए अलग अलग रिसोर्सेस मैंने जाके देखा है. बुक्स हो सकता है मूवीज हो सकता है या और कुछ लोगों का अनुभव हो सकता है दैट हैज बिकम द नॉलेज बेस. उसके हिसाब से देन आई डिसाइड हाउ कैन आई एक्सपीरियंस दिस इसको मैं कैसे अनुभव कर सकता हूं. सो दैट इज द मेथडोलॉजी पार्ट. So why all these things are important? दीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि स्पार्क के नाम पर हम जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आज भी कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कशन चला व्यक्त से अव्यक्त के ओर, सो दैट इज ऑल्सो रिसर्च प्रोजेक्ट बेसिकली, साइंटिफिकली अगर आप करें या ना करें, बट इफ यू डू थिंग्स इन अ मेथोडोलॉजिकल वे, सिस्टमैटिक वे, दैट्स ऑल्सो रिसर्च, वो भी रिसर्च है। लेकिन रिसर्च वो कब बनता है, जब आप ऐसे सोचेंगे जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्त से अव्यक्त की ओर, तो वही आपका रिसर्च टॉपिक है। पहले तो आपको व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है आपको पता है, बट यू नीड टू हैव अ काइंड ऑफ क्लियर मीनिंग डेफिनेशन, एंड दैट शुड नॉट बी अ कॉम्प्लेक्स थिंग, टू मेनी थिंग्स, इट शुड बी समथिंग विच इज एक्शनेबल। तो ऐसे आपको पहले एक डेफिनेशन चाहिए होता है, सो दैट इज द व्हाट इज इट पार्ट, जिसको हम कह रहे थे ऑन्टोलॉजी। ठीक है, तो आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल हियर, से फॉर एग्जाम्पल अशरीरी क्या है, उसके ऊपर इंडिविजुअली आप खुद के ऊपर एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हम कई बार सोचते हैं ना, जब जनवरी मास आता है, बस अभी एक महीना हम कुछ कोई एक चीज के ऊपर करेंगे, सोचते हैं ना। अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग होता है, अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग व्यक्ति के लिए, लेकिन जो टॉपिक आप लेते हैं उसके ऊपर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, उसके लिए पीएचडी डिग्री की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ अंडरस्टैंडिंग्स की जरूरत है। सो इफ यू टेक अशरीरी एज एन एग्जाम्पल, सो व्हाट आई हैव डन इज, फर्स्ट थिंग इज मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया, so I'm not going in the linear order, what is it and then what are all the informations related to that, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ अनुभव, उस order में नहीं जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली हम जो करते हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर अशरीरी ही मेरा टॉपिक है, सो वॉट आई विल डू, आई विल जस्ट गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस, तो वही मैंने यहाँ पर किया है विथ रेफरेंसेस, सो दैट्स द डिफरेंस। वॉट्स द मेन डिफरेंस, आप कहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं, इज इट एन ऑथेंटिक सोर्स, आप ऐसे ही इधर उधर से कहीं उठा रहे हैं, उसका रेफरेंस क्या है। सो दीज आर ऑल द सिस्टमैटिक एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च बेसिकली। तो वही यहां पर किया है, अशरीरी क्या है, मे बी इट इज वेरी स्मॉल बट आई एम जस्ट रीडिंग वॉट इज देयर। सो अशरीरी स्थिति क्या है, जस्ट टू लाइन डेफिनेशन, फिर उसके बाद तो उसको अनुभव करने के लिए क्या क्या युक्तियां हैं, कई सारी युक्तियां हैं यहां पर लिस्ट आउट किया है। फिर उसके बाद व्हेन यू इम्प्लीमेंट, व्हाट आर ऑल द ऑब्स्टिकल्स यू मे फेस, क्या क्या विघ्न आ सकता है, तो उसका लिखा है। फिर उसके बाद फायदा क्या हो सकता है, सो सम आइडियाज आई हैव जस्ट गैदर्ड विथ रेफरेंसेस। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई हैव डन with that rough road map, now I am going in the systematic way defining what it is. Overall कुछ messages मैंने collect करके रखा हूँ, now what I am doing is, what is this ashariri sthiti, and that is going to be my definition until I finish this project, एक महीने का हो या दो महीने के, कितना भी आप करना चाहते हो लंबा, वो पूरा होने तक यही मेरा definition है। ये definition अभी गलत भी हो सकता है, but you need to clearly understand at the end of your project that this is wrong, that's also a research. sirf sahi bolne ke liye hi aapka research aisa nahi hai, pura research karne ke baad agar aapko ye clarity milti hai ki maine jo kiya hai, this is not the definition of ashriri based on my experience, 3 months ka ho ya 6 months ka ho, jo bhi aapka experiment hua hai, that's also an important finding, क्योंकि कम से कम आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये इसका डेफिनेशन नहीं है, दूसरा है, सो दैट कैन बी योर सेकेंड प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो दैट इज दिस फर्स्ट पार्ट, मैंने कुछ डेफिनेशंस दिया हूं, ये सारी चीजें आई हैव टेकन फ्रॉम अव्यक्त मुरली ओनली। एक है मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूं, बिंदु हूं, सो दिस कैन बी वन डेफिनेशन, और थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन जैसा है, शरीर से न्यारा होकर कर्म में आना, सो दिस ऑल्सो काइंड ऑफ अशरीरीपन। नेक्स्ट है शरीर का कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करें, सो दिस इज ऑल्सो मोर ऑफ ए फंक्शनल डेफिनेशन, प्रैक्टिकली यही होता है। So this is the first part which I was telling as ontology. क्या है वो वस्तु जिसके ऊपर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप कुछ पुरुषार्थ करना चाहते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट बिगिनिंग पॉइंट. नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, आई हैव जस्ट डिफाइंड विथ फ्यू लाइंस. अभी इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकता है. से फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अशरीरी शब्द सुनते हो, आपके मन में आएगा कि विदेही शब्द भी बाबा यूज करते हैं, वो क्या है, यही है या वो अलग है. ऐसे बहुत सारी चीजें रिलेटेड हो सकता है. तो ऐसे जो भी आपके मन में आता है इसके रिलेटेड, अशरीरी के रिलेटेड, कोई भी ऑथेंटिक नॉलेज के रिसोर्स से यू जस्ट गैदर द इंफॉर्मेशन. अगर आपको अशरीरी के ऊपर काम करना है, बीके से रिलेटेड जो भी कुछ आइडियाज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका बेस्ट रिसोर्स हम सबको पता है, एक साकार मुरली है, अव्यक्त मुरली है, या दादी से एक्सपीरियंस या कोई सीनियर्स का एक्सपीरियंस हो, तो यहां से मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज द सेकेंड पार्ट. सो जितना एलोबरेटली मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, देन आई गेट कॉन्फिडेंस, ओके इसको वी कैन इम्प्लीमेंट इन दिस वे मोर सक्सेसफुली. जितना आपका नॉलेज बेस वाइड होगा, उतना यू कैन जस्ट डू इन अ पिन पॉइंटेड मैनर, इन अ क्लियर मैनर पुरुषार्थ आप कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो आफ्टर आई हैव गैदर्ड सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेट्स से सम इयर्स ऑफ अव्यक्त मुरली एंड देन साकार मुरली, सम एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर सीनियर्स, फाइनली आई हैव नैरोड डाउन टू वन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, वो है प्रीत, मीत, गीत और रीत. मुझे लगा कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, लगा कि अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है तो उसका मेथडोलॉजी ये चार शब्द है. ऐसे ही आप जो भी टॉपिक लेते हो उसके लिए भी यू कैन ब्रिंग आउट सम स्ट्रैटेजी, एंड दैट स्ट्रैटेजी शुड नॉट बी टू मेनी, क्योंकि एक समय पर आप एक ही काम कर सकते हैं, दो काम भी नहीं कर सकते. अगर आप दो भी साथ में रखते हो, इट मीन्स यू आर डाइल्यूटिंग योर डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस. इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी ब्रॉड, लेकिन अनुभव में, गहराई में जाने के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी नैरो, पिन पॉइंटेड. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज द मेथडोलॉजी पार्ट, हाउ आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस. और इसमें भी जितना आप नॉलेज कलेक्ट किया, दूसरों से डिस्कस करके कुछ अनुभव का लेन देन सब चीजें आपने लिया, उसके हिसाब से यू कैन रिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. आई से दैट आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस अशरीरी स्थिति, ये जो चार शब्द है इसको यूज करके मैं अनुभव करना चाहता हूं, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जिससे मुझे लगा कि इससे ही मुझे अनुभव होगा. और भी बहुत सारे तरीका हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर मेरा मन क्यों लग गया. सो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ. जब आप एक स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करते हो कि हाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, इससे मैं अनुभव कर सकता हूं, देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, इसके ऊपर ही क्यों मेरा मन लग गया. और भी बहुत सारी तरीकाएं हैं. सो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट रिफाइनिंग in terms of understanding what it is actually. What it is mana, ice cream nahi hai, wo to shabd hai. Wo gol wala sweet nahi hai, wo bhi descriptions hai. Ice cream is something which is the actual stuff. Jab tak aap usko taste nahi karenge, tab tak wo stuff kya hai uska aapko kuch pata nahi chalta hai. You can only keep talking in terms of informations, descriptions, all those things. तो वही मैं कह रहा हूं, जैसे आप रिफाइन करते जाएंगे, व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्यों मेरा मन इसके ऊपर लग गया, देन यू विल गो क्लोजर एंड क्लोजर टू डिफाइनिंग दैट स्टफ मोर एक्यूरेटली. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, व्हाई माय माइंड गॉट स्ट्रक विद दीज फोर वर्ड्स. ये जो चार शब्द है इसका एक बहुत यूनिक मीनिंग है, एक कॉमनैलिटी है. ये जो चार शब्द है, कोई गेस कर सकते हैं, ये जो चार शब्द है, इन चार शब्दों में व्हाट इज द कॉमनैलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, शब्दों में नहीं, शब्द में तो राइमिंग है, प्रीत मित वो तो है. इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट इज द कॉमनैलिटी इन ऑल दीज थिंग्स, प्रीत मित गीत रीत. हां जी, कोई एक बता सकते हैं? बहुत शब्द आ रहे हैं. लव, ओके, वो तो पहला शब्द है. प्रीत, रिलेशन, प्रीत मीत, ओके. गीत में रिलेशन क्या है? देर इज नो ह्यूमन इन दैट, राइट? व्हाट इज द रिलेशन देयर? हां जी, एकदम ओके. सो देन, मेनली ये जो फर्स्ट थ्री वर्ड्स है, इन तीन शब्दों का एक इम्पॉर्टेंट कॉमनैलिटी है. प्रीत हो या मीत हो, गीत हो, उसका अनुभव आपको तभी होता है जब आप उसमें खो जाते हो. प्रीत में भी यू जस्ट गेट योर सेल्फ लॉस्ट, खो जाते हैं उसमें, इसलिए अनुभव होता है. मीत में भी वही है, फ्रेंडशिप में भी यू जस्ट लूज योर सेल्फ कंप्लीटली और उसके वजह से अनुभव होता है. गीत में भी वही है, यू जस्ट लूज योर सेल्फ इन टू दैट एक्सपीरियंस ऑफ म्यूजिक एंड दैट इज वेयर द एक्सपीरियंस बिगिन्स. रीत का थोड़ा सा डिफरेंट है, सो विल टेक दैट लेटर ऑन. सो ये जो तीन शब्द है, इसका कॉमनैलिटी ये है, जब आप उसी में खो जाते हो तभी आपको अनुभव होता है. मे बी माई माइंड गॉट स्ट्रक विद दीज फोर वर्ड्स बिकॉज देर इज समथिंग इन अ वेरी सटल मैनर कनेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स विच इज वन. And that one is खो जाना, और उसी में अनुभव होता है. लगन में मगन होना. So in essence, few lines before we go there. आप जो भी कुछ टॉपिक के ऊपर कुछ पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो क्या है, जस्ट डिफाइन योरसेल्फ इन फ्यू लाइंस, वन और टू लाइंस. सेकंड थिंग इज मैक्सिमम उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ कहाँ से कैसे ले सकता हूँ, कलेक्ट एज मच एज पॉसिबल. फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन का फुल स्टॉप. नेक्स्ट, अभी मुझे करना क्या है अनुभव करने के लिए. सो दीज आर द थिंग्स इन एसेंस रिसर्च. बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने कहा है, बट ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज थिंग्स, डिफाइनिंग व्हाट इट इज, गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट एवर द टॉपिक यू वांट टू वर्क, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मुझे क्या करना है अनुभव करने के लिए. हर एक लेवल एक अलग अलग प्रोजेक्ट जैसा है, क्योंकि देर कैन बी मल्टीपल स्ट्रैटेजी इन ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑल्सो, बट आई जस्ट सिंप्लीफाइड, मे बी ओवर सिंप्लीफाइड. And you also need to know what are my goals or what are my expectations. ये जो पुरुषार्थ कोई टॉपिक के ऊपर मैं करना चाहता हूँ उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ इससे. You need to have some clearly defined targets, your outcomes or goals, whatever you want to call. Say for example, I have written something. साक्षीपन स्थिति सहज अनुभव होना चाहिए. If I practice अशरीरी स्थिति, if that is going to be my project, अशरीरी स्थिति. या बाप का सातीपन का अनुभव. सो दिस कैन बी माई आउटकम्स. वेदर आशरीर स्थिति आई एम एक्चुअली वर्किंग, आई एम आई रिसर्चिंग ऑन दैट, यू कैन चेक विथ दीज पैरामीटर्स. न्यारा प्यारा स्थिति या निर्णय करने की शक्ति, इट कैन गेट एनहांस्ड, यू कैन चेक दैट ऑल्सो. या प्रकृति के जो भी कुछ कैलमिटीज है, जो भी कुछ सिचुएशंस आते हैं वो आएंगे, बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड, यू विल फील कंप्लीटली सेफ. You can measure this also as a result of practicing ashariri sthiti ya sampuranta ka jo bhi kuch anubhav hai wo sahaj ho sakta hai. And baba ye bhi kehte hain murli mein, ashariri ho ke aap wahan se abur road se yahan tak paidal aayenge to bhi aap thakenge nahi. You can test that also. So all these are connected with ashariri sthiti. So devising how to measure that with all these outcome measures, this also you can think, you can plan, and then you can devise for yourself that suits you. ठीक है. So अगर आप इस तरीके से देखेंगे, each and every one of you can become a highly refined scientist. Nobody can stop you except yourself. अभी बताइए कौन कौन साइंटिस्ट बन सकते हैं. कुछ लोग सोचने लग गए. तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है. अभी तक हमने जो भी कहा है कोई भी कर सकते हैं. इसके लिए कोई कुछ डिग्री की जरूरत नहीं, सिर्फ डेली मुरली सुनना है और समझना है, उसको प्रैक्टिकली कुछ इम्प्लीमेंट करना, और कुछ चाहिए ही नहीं, बस इतना ही चाहिए. ठीक है. तो जो भी आप टॉपिक्स लेंगे उसका असेसमेंट भी अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने इसमें लिस्ट आउट किया, इसके लिए कोई कुछ ईसीजी नहीं चाहिए, कुछ ईसीजी नहीं चाहिए, ब्लड टेस्ट नहीं चाहिए. यू कैन डिफाइन दीज पैरामीटर्स बेस्ड ऑन मुरली पॉइंट्स, और वही पॉइंट जो आप रेगुलरली चार्ट के नाम पर लिखते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ वैलिड टूल प्रोवाइडेड यू वर्क मेथडोलॉजिकली लाइक दिस. सो दिस इटसेल्फ कैन बी अ वैलिड टूल. एक है, इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक वॉट इज गोइंग ऑन इन साइड द हेड when somebody practices ashariri sthiti, उसके लिए भी बहुत सारे tools है, उसमें से ईजी एक टूल है. For example, you can use MRI and you can use something called as transcranial magnetic stimulation. You can use something called as a transcranial direct current stimulation. You can also use transcranial alternative current stimulation. तो कई सारी चीजें हैं. तो ऐसे उसमें से एक है ईजी, which is relatively cheaper and easy to do in terms of portability and other features. ठीक है. तो ये जो अभी कनेक्ट किया है 64 चैनल ईजी कहते हैं. चैनल माने इट्स लाइक एन इलेक्ट्रोड्स. इतना सारा बड़ा हेड है, तो पूरा हेड कवर करने के लिए इलेक्ट्रोड्स सारे फ्रंट साइड बैक सारी जगह पर लगाते हैं. तो वही वहां पर लगा है. ये जो राउंड राउंड बटन जैसा दिख रहा है वो सारी चीजें इलेक्ट्रोड्स है. ब्रेन से जो भी इलेक्ट्रिक करंट निकलता है इट जस्ट कैप्चर्स दैट माइन्यूट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यहाँ पर ये जो बॉक्स रखा है पिंक कलर बॉक्स है दैट्स बेसिकली एन एम्पलीफायर क्योंकि ये जो करंट है वो इतना माइन्यूट है डायरेक्टली यू कैन नॉट एक्चुअली कैप्चर दैट एंड सी तो उसको एम्पलीफाई बढ़ाना पड़ता है तो वही काम ये पिंक कलर बॉक्स करता है देन यू सी दैट कैन यू कनेक्ट दिस थिंग एक HDMI एक USB HDMI बैक साइड में सो जो भी इलेक्ट्रिक करंट निकलता है ब्रेन से दैट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय दीज इलेक्ट्रोड्स फिर ये एम्पलीफायर उसको बढ़ाता है देन यू सी द वेव्स और ये जो वेव्स आप अभी देखेंगे वो भी एक्चुअली रॉ वेव्स है उसको हम प्री प्रोसेसिंग कहते हैं फिर उसके बाद बहुत सारा क्लीनिंग काम करना पड़ता है देन दूसरा USB में कनेक्ट करना सो ईजी का प्रिंसिपल इन फ्यू लाइन्स इफ आई वॉन्ट टू से इट्स लाइक अभी मैं यहां पर बैठ के बात कर रहा हूं अगर कोई वहां पर बाहर रास्ते में बैठ के सुन रहा है दे कैन जस्ट लिसन एंड से somebody इज टॉकिंग लेकिन वो somebody कौन है कहां से ये आवाज आ रहा है वो सब चीजें एक्चुअली उनको पता नहीं चलता है सो टू आइडेंटिफाई दैट दे नीड टू डू सम काइंड ऑफ वी कैन से मे बी प्रेडिक्शन वर्क ठीक है ये जो वॉइस ये जो आवाज आ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी क्या है इसका पिच क्या है ऐसे फ्रीक्वेंसी पिच किसका हो सकता है सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी डू इन द नेम ऑफ प्रोसेसिंग एंड देन एनालिसिस देन वी डू अ काइंड ऑफ गेस वर्क और प्रेडिक्शन वर्क ओके मोस्ट लाइकली दिस वॉइस इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन बिकॉज द टोन इज लाइक दिस and the style of speech is like this then we say okay this could be from this person I say he yahan par abhi 64 electrodes hai 64 electrodes se jo bhi electric current hum capture kar rahe hain brain mein bahut sare regions hote hain kis region se aa raha hai we cannot actually say just by looking at those waves to jaise maine abhi example kaha ki ye tone aisa hai pitch aisa hai shayad inka ho sakta hai so सिमिलर काइंड ऑफ वर्क वी डू विथ दीज वेव्स ऑल्सो इसका फ्रीक्वेंसी ऐसा है और इसका चेंज ऐसे फ्लक्चुएट होता है शायद ये यहां से आ सकता है ये रीजन जो है वहां से इमोशनल सेंटर से आ सकता है या कुछ डिसीजन मेकिंग सेंटर से आ सकता है सो दैट इज हाउ वी एक्चुअली डू दैट कैन यू जस्ट ब्लिंक योर आईज आई थिंक यू नीड टू शो द ऑक्सीपिटल इलेक्ट्रोड्स एक ही इलेक्ट्रोड दिख रहा है विच इलेक्ट्रोड आई डोंट नो आर दिस फ्रंटल इलेक्ट्रोड्स ऑल्सो यू कैन शो फॉर शो द फ्रंटल इलेक्ट्रोड्स कीप ऑल द इलेक्ट्रोड्स अदरवाइज Yeah, frontal are there, it's connected. Can you blink your eyes? I think it could. Yeah. Can you just close your eyes? So, ये जो frequency है, so when he closes his eyes, close his eyes. Yeah, the difference is not that much actually. So here you can see यहाँ पर ये जो frequency है थोड़ा सा कम है compared to, can you open your eyes? Otherwise can you clench your teeth? Yeah, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, so यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कितना frequency बहुत ज्यादा है. So, ये जो फ्रीक्वेंसी है जितना माइंड काम होगा उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी बिकम्स लेसर एंड लेसर. या यू कैन रिलीज, या यू कैन, जितना टेंशन होता है उतना मैक्सिमम मस्कुलर एक्टिविटी भी होता है. आप सभी अनुभव किए होंगे जब टेंशन ज्यादा होता है मसल सब टाइट हो जाता है, तो उसके हिसाब से ही वहां पर जो पहले देखा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज वो मसल टेंशन के वजह से हुआ है. फिर उसके बाद जब आई मूवमेंट्स शुरू हुआ था तो उस टाइम पर थोड़ा सा इट वाज ड्रिफ्टिंग डाउन एंड देन गोइंग अप. वो जो ड्रिफ्टिंग हुआ था वो सारी चीजें आई मूवमेंट्स रिलेटेड है. और आईज जब क्लोज करेंगे, आंखें बंद करते हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी ये जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है उसका फ्लक्चुएशन कम होता है. या नाउ यू कैन जस्ट मेडिटेट. Yeah, you can see here, this region, especially the frequency, it is slowing down. Yeah, yahan par bhi. So he is doing meditation now. सो जो हम अल्फा थीटा बीटा गामा ये सब चीजें कहते हैं, सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू द स्लोइंग डाउन और इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वेव्स. यहां पर आप देख सकते हैं इट इज स्लो. कैन यू गो टू द इम्पीडेंस थिंग, जस्ट आई विल शो दैट. So, ये जो वेव्स आपने देखा है विल टेक दोज वेव्स. फिर उसके बाद ये वेव्स कौन से ब्रेन रीजन से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो टॉप व्यू है एक्चुअली इलेक्ट्रोड सारी चीजें वहां पर राउंड राउंड दिखा है, तो हर एक इलेक्ट्रोड एक एक ब्रेन रीजन को कवर करता है. तो वो जो वेव्स हमने देखा वो सारी चीजें कौन से इलेक्ट्रोड से, मतलब कौन से ब्रेन रीजन से आ रहे हैं, वी कैन एक्चुअली प्रोसेस दैट, वी कैन एनालाइज, विच इज वॉट जनरली वी कॉल इट एज ब्रेन मैपिंग. मतलब जो भी वेव्स आप देख रहे हैं उस टाइम पर वो क्या कर रहे थे. इफ ही वॉज डूइंग मेडिटेशन दिस ब्रेन वेव मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ मेडिटेशन एंड ये कहाँ से आ रहा है, यू कैन एक्चुअली मैप दैट टू पर्टिकुलर रीजन वेयर फ्रॉम इट इज कमिंग, जिसको हम ब्रेन मैपिंग कहते हैं. तो अलग अलग ब्रेन रीजन का अलग अलग कलर कोडिंग देखे वी कैन एक्चुअली शो इट इन दिस फॉर्मेट. जैसे टॉप व्यू में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, वी कैन शो दैट. सो दैट इज वॉट वी कॉल एज ब्रेन मैपिंग. इफ यू कैन शो द ऑल द इलेक्ट्रोड्स इफ इट्स पॉसिबल, अदरवाइज वी कैन. सो इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, अगर आपको भी ऐसे करना है, टेक्निकली आपको कुछ नॉलेज है, वी कैन एक्चुअली ट्रेन यू इन दीज थिंग्स एंड इट इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. मीन्स रिकॉर्डिंग द डेटा, इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग. एनालाइज करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है, बट डेटा एक्विजिशन, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, ईजी है. सो ये कैप कैसे फिक्स करना है, इलेक्ट्रोड्स कैसे फिक्स करना है, जेल कैसे लगाना है, सारी चीजें एनीबडी कैन एक्चुअली लर्न इफ यू हैव सम इंटरेस्ट. ठीक है, सो दैट्स अबाउट द ईजी पार्ट. आई विल जस्ट वाइंड अप. ऐसे ईजी डेटा यूज करके, आई थिंक ऐसे ईजी डेटा यूज करके करेंटली वी आर डूइंग ए प्रोजेक्ट विच इज रिलेटेड टू मेडिटेशन प्रोफिशियंसी. मतलब कितना हम अच्छा मेडिटेशन करते हैं उसके लिए एक इंडेक्स डेवलप कर रहे हैं. जैसे कई सारे एप्स होते हैं ना आजकल, आप रिलैक्स होंगे तो उससे कुछ रिलैक्स होंगे तो कुछ इंडिकेशंस आएगा आपके ऐप में. अगर इफ यू आर स्ट्रेस्ड देन दैट गिव्स सम अदर काइंड ऑफ इंडिकेशन. तो ऐसे अगर कोई मेडिटेशन अच्छा करता है तो उसका कोई इंडेक्स हम डेवलप कर सकते हैं. दैट वी आर एक्चुअली वर्किंग एज ए पीएचडी रिसर्च टॉपिक, एक स्टूडेंट का पीएचडी टॉपिक है. तो अराउंड 30 सब्जेक्ट्स का डेटा ऐसे ही 64 चैनल ईजी का हमने रिकॉर्ड किया है. 30 लोगों में से ये जो ग्रीन कलर में है, से फॉर एग्जाम्पल अगर 100% माना परफेक्टली दे आर डूइंग मेडिटेशन, पीक लेवल का जो भी कुछ आप बोल सकते हैं मेडिटेशन का अनुभव 100% है, तो उसमें से ये जो 30 लोगों का हमने किया, उसमें से अराउंड 10 लोगों का एक्चुअली 65 एंड अबोव है. एंड ऑल दीज पीपल दे आर लाइक एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ मेडिटेशन एक्सपीरियंस वी हैव टेकन. जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 10 साल से मेडिटेशन, हमारे बीकेस मेडिटेशन किया है, उन लोगों का ही डेटा है ये. लेकिन उसमें भी सिर्फ 30 में 10 लोगों का 65% एंड अबोव है. तो इसका हमने कैसे टेस्टिंग किया है? से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि मैं अशरीरी स्थिति में गहराई में जाता हूं, तो इंडेक्स का दो पार्ट है. एक पार्ट है आप जब भी अशरीरी स्थिति में जाएंगे सारा टाइम आपका ब्रेन वेव्स एक जैसा दिखेगा या कैसे? एक जैसा दिखना चाहिए ना, क्योंकि आप एक ही चीज के अनुभव में जा रहे हैं अशरीरी स्थिति. तो ये इंडेक्स का एक पार्ट है कितना सिमिलर है. से फॉर एग्जाम्पल आप अगर अभी लड्डू खाते हैं तो उसका कुछ अनुभव है, कल लड्डू खाएंगे तो लड्डू तो लड्डू ही, आपका अनुभव सेम ही होना चाहिए ना, अलग अलग तो नहीं होना चाहिए ना. तो अगर सेम है देन यू आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. तो वैसे ही ये इंडेक्स का एक पार्ट है, जब भी आप वो मेडिटेशन की स्थिति में जाएंगे आपका ब्रेन वेव सिमिलर होना चाहिए, कितना सिमिलर है. सो दैट इज दिस फर्स्ट पार्ट, यहां पर जो फर्स्ट सेकेंड कॉलम में है. सेकेंड कॉलम है जैसे अगर आप टैबलेट खाते हो कोई कुछ बीमारी के लिए, कैसे होता है उसका अनुभव? तो बहुत कड़वा होता है ना. तो वैसे उसके साथ अगर आप लड्डू खाते हो बाद में, उसका अनुभव कैसे होता है? सो दीज टू आर कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंसेस. ये दोनों सिमिलर नहीं होना चाहिए, तभी आपका टेस्ट का जो भी कुछ काम अंदर चल रहा है वो सही रीति से चल रहा है ना. तो वैसे ही द सेकेंड पार्ट ऑफ इंडेक्स इज, अगर आप अशरीरी स्थिति में जा रहे हैं तो आपका रिलैक्सेशन कहो या फोकस कहो या न्यारा प्यारा स्थिति कहो, वो एक है. दैट शुड नॉट लुक लाइक वेन यू आर इन टेंशन और वेन यू आर इन स्ट्रेस, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज है ना. तो कॉन्ट्रास्ट का कितना इंडेक्स है, कितना मैग्नीट्यूड है, तो दैट इज दिस पार्ट द थर्ड कॉलम. तो ये जो सिमिलैरिटी एंड देन कॉन्ट्रास्ट इंडेक्स, इन दोनों को मिला के वी हैव डेवलप्ड दिस थिंग कॉल्ड एज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स. तो ये इंडेक्स में 30 लोगों का जो हमने किया उसमें से 10 लोगों का 65 एंड अबोव है. तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितना आपको रिसर्च करने का रुचि होता है उतना आपको सिस्टमैटिकली खुद के ऊपर काम भी करना पड़ता है. अदरवाइज क्या होता है, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मैं 20 साल से ज्ञान में हूं, लेकिन कितना ज्ञान अंदर है, उसका अनुभव कितना है, वी मे नॉट एक्चुअली हैव कॉन्फिडेंस टू से दैट. तो उसके लिए भी ऑब्जेक्टिवली कुछ इंडेक्स हम डेवलप कर सकते हैं, वही ये पीएचडी का काम है। तो ऐसा अगर किसी को कुछ करना है, रिसर्च करने का कुछ रुचि है, सो देन वी कैन यूज ऑल दीज थिंग्स जो भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। ठीक है, सो इन एसेंस इट्स लाइक एक कहानी है, सिंपल सी कहानी, उसे मैं खत्म करता हूँ। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, जस्ट टेक अप दिस स्टोरी, स्टोरी ऑफ बफलो। एक व्यक्ति था, वो गांव वाला था, उसको सिर्फ इतना ही पता है खेती और वहाँ के जो भी कुछ भैंस है और उससे दूध निकलना, फिर उसके निकालना, फिर उसके बाद दही जमाना, कुछ भी हो यही उनको पता था। अचानक उनको ऐसा ख्याल आया कि मुझे भी कहीं शहर में जाना है, वहां पर जाके कुछ ऑफिस का काम करना है। कहीं अप्लाई किया, फिर अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो पहले कुछ क्वेश्चंस पूछा बॉस ने, उन्होंने शुरू किया, फिर उसके बाद आया कि ये भैंस और दूध और दही उसके साथ कनेक्ट किया। ऐसे पूछते पूछते फाइनली ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने बताया, फ्लाइट के बारे में बताओ, पूछा। तो उन्होंने शुरू किया कि फ्लाइट ऊपर उठता है, बहुत आवाज करता है, और ऊपर जाके आप देखें तो नीचे सब चीज छोटा छोटा दिखेगा, और उसमें जो छोटा छोटा दिखता है उसमें भैंस भी दिखेगा, वो भी खेती में ही घूमेगा और वो जो खेती में भैंस है उससे दूध निकाल सकते हैं, फिर उससे दही भी निकलेगा। तो आप कुछ भी प्रश्न पूछो, घुमा के फिरा के फिर भैंस के पास ही आएगा। तो समझ में क्या है आपको इसमें, इस स्टोरी से? आप रिसर्च तभी कर सकते हैं, आप कुछ भी करो लेकिन आपके दिमाग में अशरीरी बनना है, बस वही है, वही दिखना है कहीं भी, जो भी आप देखें, आपका जो भी कुछ टॉपिक है वही आपको दिखना चाहिए, तभी आप गहराई में जा सकते हैं। एक चीज अंदर है लेकिन बाहर कुछ सौ चीज दिखता है तो फिर आप अर्जुन नहीं बन सकते। उनको सिर्फ क्या दिखा है, वो जो पीपल है, वो जो पक्षी का, सिर्फ वही दिखा ना। तो वैसे ही आपको कल से क्या दिखना चाहिए, सिर्फ भैंस ही दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, बस यही है, सच में सार रूप में रिसर्च है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है, सुनकर के जाइएगा, बहन जी सुना रहे हैं। उससे पहले रामाजयम भाई का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। आप सब देख रहे हैं एक साइंटिस्ट कितना ह्यूमरस हो सकता है, उमंग उत्साह वाला हो सकता है। ठीक है ना, आइए।
रामाजयम भाई जी के साथ ये दो बहनों का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि हम जब दुनिया में भी जाते हैं और स्पार्क विंग के बारे में बताते हैं तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ऐसा मेल जोल बताना, और उसके पीछे ये मेहनत करते हैं ये हमारे भाई बहने, ताकि हम बाहर जाकर सेवाएं और अच्छे तरीके से कर सके। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और कल 3:30 बजे के पहले से ही सभी हॉल में आ जाएंगे, कल विशेष अमृत वेला है 3:30 बजे से 5 बजे तक। कंटिन्यूसली अच्छे से हम एक अच्छी स्थिति में योग करेंगे, कोई भी बीच में से उठ के ना जाएंगे। किसी बहुत जरूरी कारणवश आपको ऐसे लगता है कि उठना ही पड़ता है तो आप पीछे बैठकर योग करना कल। और टीचर्स बहने समय के पहले आ जाएंगे, क्योंकि कल 20 टीचर्स बहने स्टेज पर योग कराने वाले हैं। विशेष हमारे आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी की हेल्थ इश्यूज भी हैं, उस वजह से भी हमें सबको तपस्या के अच्छे वाइब्रेशंस फैलाना है और भाई जी को भी सकाश देना।